السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وقلبنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ذی الحجہ کا مہینہ ایک پیغام دیتا تھا کہ ذی الحج ہے کیا اور کس لیے ہر سال میں یہ قربانی کا مہینہ آتا ہے. قربانی کا مہینہ ہر سال آتا کیوں ہے؟ اس کو غور سے بیٹھ کے سوچیں. یہ ہمارے لیے حفاظتوں کے پیکج لاتا ہے، برکتوں اور رحمتوں کی اور خیروں کی ایک ترتیبیں اور حیرت انگیز نظام لاتا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا مہینہ، یہ ذی الحج کتنا اہم ہے، تو جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، اور جس کی قربانی نہیں ہے یعنی اس پہ واجب نہیں، فرض نہیں، صاحب نصاب نہیں، مالدار نہیں، وہ بھی اتنا اس کا انتظار کرے، اتنا انتظار کرے، تو لوگ اس کو دیوانہ کہنا شروع کرتے ہیں. ایک حدیث سناؤں آپ کو. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کرتے ہیں. پاگل کہنا شروع کر دے. ایک صاحب نے مجھے اس کا ایک تجربہ بتایا. اس نے کہا میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور میں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اب جو بھی دیکھتا بندہ، ہر بندہ میرے سے ادب کرتا، یہ تو مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا اللہ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے اور تسبیح کرتا رہتا ہے، اعمال ہی کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ذکر کے دوران تو لوگ مجھے کچھ نہ کہتے. جب میں ذکر سے اٹھتا کوئی دعا کے لیے کہہ دیتا، کوئی بچے کو دم کراتا، کوئی گریبان کھول کے کہتا جی ایک پھونک تو مار دے. لوگوں کے ہاں میری عزت ہونے لگی، میرا وقار اور میری شان و شوکت بڑھنے لگی. اب میں حیران، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ پاگل کہنے لگے، لوگوں نے تو تمہیں عزت دینی شروع کر، وقار، شان و شوکت. اب میری عقل حیران، سب کا مال، سب نظام سچا ہے، کہیں میرے کرنے میں کمی ہے؟ نظام تو سارا سچا ہے، اللہ اس کا حبیب سچا ہے، تو میرے کرنے میں کمی ہے. اب میں یہ سوچنے لگ گیا، کہنے لگا ہوا یہ، ایک بابا جی ایک دفعہ مجھ سے دعاؤں کا کہہ کے فرمانے لگے. بھلے مانے سا جوان لگتا ہے پر اکیلی اپنی قبر کی فکر کیے ہوئے ہے، امت کا فکر نہیں کر رہا. کبھی کبھی یہ جب مسجد میں آتے ہیں نا، ایک لمحہ ایسا کیا کر، ان کو بیٹھ کے کہا کر یہ بھی ذکر کر لیا کرے، پھر جتنے بھی ذکر کریں گے तुझे भी सवाब मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा, और उन सब का सारा तुझे मिलेगा, और उनके सवाब में भी कमी नहीं होगी। तो बाबा जी ने कोई ऐसी बात बताई मुझे, बिल्कुल लगी अच्छी बात है कि मैं तो अकेला मैं ही जिक्र कर रहा हूं। मैंने कमली वाली की उम्मत का फिक्र किया ही नहीं, खत्म नबूवत के सदके कोई नबी तो आएगा ही नहीं, हमने एक दूसरे को समझाना है। वही इस तरह की एक बात बस मेरे अंदर ऐसे चुप गई। अब मैं जिक्र करता, सिर्फ मैंने एक नमाज के औकात ऐसे रखे थे कि नमाज के बाद एक तो बंदों को ऐसे मेरे साथ जो कोई बैठ जाता नमाज में तो उसको लेके बैठ जाता, कहता जिक्र किया करो, तस्बीह तुम भी किया करो, तुम भी बैठ के कुछ वक्त अल्लाह को दिया करो। लोगों ने कहा अच्छी बात है, उनको फायदे बताता नफे बताता। अब ये कहानी खत्म हो रही है यहां, जरा गौर से सुनिएगा। अब मेरे कहने कहलाने पे दो तीन बंदे और भी हैं, कोई थोड़ा सा वक्त मस्जिद में देने लग गए, किसी कोने खुदरे में बैठ के अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अब मुझे एहसास हुआ तो काम तो बहुत अच्छा है कि मेरी वजह से कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की याद में हुजूर के दरूद पाक में किसी तस्बीह में लग गया। कोई दो तीन हफ्ते गुजरे थे, एक बूढ़ी खातून आई अपने बेटे को साथ लेके, आज के मुझ पे बरस पड़ी। खुद तो घर से फारिग है, पागल है और वेला है, कमला है, दीवाना है, और तूने लोगों को भी खराब करना शुरू कर दिया है। खूब मुझे बेइज्जत किया। अच्छा खासा मेरा बेटा जो है वो घर में मेरे साथ बैठता था, ये करता था, तो उन्हें उसको उठा के मस्जिद में बैठा दिया। मैं बेटा कहता हूं कहां है बेटा, अम्मा इतनी देर मस्जिद में बैठ के मैंने अल्लाह का जिक्र किया था। अब जो मुझे उसने कहने लगे माई ने बेइज्जत किया, उधर माई मुझे बेइज्जत करे, उधर मैं कहूं सदक तो या रसूल। मुझे कोई गुस्सा ही ना, क्यों मालूम हुआ कि मंशा नबूवत मेरे कमली वाले की मंशा जो थी वो ये थी कि अल्लाह का जिक्र इतना करो इतना करो इतना करो, यानी खुद भी और लोगों को अल्लाह की मोहब्बत और इश्क मुस्तफा और मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पे इतना लगाओ कि लोग तुम्हें पागल दीवाना और पता नहीं क्या क्या बातें तुम्हारे ऊपर करने लग जाएं। और कहा कि वो जो लोगों ने मुझ पर बातें की, फिर समझ आई कि हदीस ये थी, मैंने तो गार में बैठ के मस्जिद के कोने में बैठ के जिक्र शुरू किया, लोगों ने मेरी इज्जत करनी शुरू कर दी, और इज्जत और इज्जत और इज्जत। हमारे एक हाफिज साहब हैं दोस्त, यहां अलफला मस्जिद में कहने लगे जुमे की नमाज के बाद असर के बाद 80 दफा दरूद पाक जो बंदा पढ़ता है उसके 80 साल के गुनाह माफ होते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। मैं जुमे की नमाज पढ़ के यह पढ़ने बैठ गया, हर जुमे पढ़ने बैठ गया एहतमाम से, सर झुका के ध्यान से पढ़ने बैठ गया। लोगों ने मेरी इज्जत शुरू कर दी और मुझे सलाम अदब एहतराम। वो लोग जो पहले तवज्जो ही नहीं करते, एक दो मिनट आगे पीछे सुई हो जाए तो बोलना शुरू कर देते थे। मैंने उनसे कहा, नहीं, मुझे कहने लगे कि आप मेरे शेख हैं, ये रियाकारी तो नहीं होगी। मैंने कहा रियाकारी नहीं है, सिर्फ एक काम कर लिया करे, हफ्ते में एक दिन एक दो नमाजियों को इसी जिक्र का कह दिया करे, और जो बेनमाजी हैं उन्हें मोहब्बत प्यार से नमाज का कह दिया करे, तो आपकी इस जिक्र में जान बढ़ जाएगी और जो रियाकारी का खतरा है वो खत्म हो जाए। कहने लगे तो बिल्कुल आसान है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मुझे मिले, कहने लगे जी वो बैठने वाली हालत ठीक थी, ये ठीक नहीं है। क्यों? कहने लगे मैं जो बैठ के जिक्र करता तस्बीह पढ़ता था, लोगों में बहुत अदब और एहतराम था, और जब से मैंने लोगों को कहना शुरू किया तो लोगों ने अनोखी बातें करनी शुरू की हैं, और ऐसी बातें हैं मैं उनका भला सोच रहा हूं और वो मेरे साथ अजीबोगरीब रवैया उनका। मैंने कहा यही मिजाज है नबूवत है। अब मैंने उनको मिसाल दी और आपको भी देता हूं, आप भी कभी कभी घबरा जाते हैं। मेरे आका मेरे हुजूर जब गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते थे, लोगों ने आपके लकब रखना शुरू कर दिए। किसी ने सादिक कहा कि कायनात में सच्चों के सच्चे ये हैं और थे भी और हैं भी। किसी ने अमीन कहा, किसी ने बरकत वाला कहा, और किसी ने यहां तक कहा कि हमारे हजरे असवद का जो झगड़ा है वो हुजूर ही निमटाएंगे। और जब मेरे वही आका के लोगों को कहना शुरू किया, वही जो सादिक और अमीन कहने वाले थे, उन्होंने आखिरी दर्जे की मुखालफत शुरू कर दी। और मेरे हुजूर को नौजबिल्ला पागल भी कहा, नौजबिल्ला झूठा भी कहा, नौजबिल्ला आपको जादूगर भी कहा, जादू कर देते हैं, जिन्नात छोड़ देते हैं। तो बात चली थी इस महीने की, कौन सा महीना? ज़िलहज का महीना। इसको अगर इसके पैकेज का पता चल जाए ना, आप पहले से तैयार करें, तैयारी करें। हां क्यों? इसमें हड्डियों का पैकेज इलाहदा है, इसमें खून का पैकेज इलाहदा है, इसमें गोश्त का पैकेज इलाहदा है, इसमें खाल का पैकेज इलाहदा है, इसमें सिरी पाई का पैकेज इलाहदा है। अभी याद रखिएगा, मैं भूल जाऊं तो याद दिलाएं कि जी आप एक पैकेज हमारा खाए जा रहे हैं। आप तो हैरान हो जाएंगे। जो मालदार लोग हैं ना, वो फौरन बड़े बड़े डी फ्रीजर खरीद ले, इन्वर्टर ना खरीदना, मैंने तजर्बा कर लिया है। वो तवाफ कर रहा था तो दो माइयां आपस में बातें कर रही थी कि मैंने कपड़ा इस रेट पे खरीदा, क्योंकि लिस्ट बना के आते हैं यहां से जाते हैं। और दूसरी ने कहा मैंने कपड़ा इस रेट पे खरीदा। दूसरी कहने लगी हां नहीं पैणा, मैं तो लुटी गई, इन्वर्टर ना खरीदा लुटी जाएंगी पैणा। फ्रीजर ना खरीदना, अगर देर पा गोश्त रखना है। इसमें एक बार कह सुना, ये मेरा कुर्बानी का पहला पैकेज शुरू हो रहा है। अम्मा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि गोश्त दोपहर हो गई, गोश्त बांटते बांटते बांटते, मैं था भाई साहब थे, ज्यादा भागदौड़ मैं ही करता था, आ रहा जा रहा। एक जगह गया तो देखा कि एक दोपहर थी, गर्मी थी, एक सब्जी वाले की दुकान एक बंदे ने खुलवाई हुई थी और उससे बासी सब्जी ले रहा था। मैं ठहर गया, मैं आज का दिन गोश्त वाफिर है और बासी सब्जी, बासी सब्जी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपका गोश्त, यानी दोपहर का क्या इंतजार किया, किसी ने नहीं दिया, अब बच्चों को रोटी तो खिलानी है। इस तरह की बातें सुनी खामोशी से, मैं जहां का गोश्त लेके जा रहा था वहां का गोश्त दिया और अम्मा को आके अर्ज की। अम्मा फरमाने लगी, अम्मा उनके घर को जानती थी, लगी तारिक मुझे तो याद ही ना रहा, बड़ी सी थाली गोश्त की भरी, छोटा गोश्त ही बनाते थे कुर्बानियां वाले साहब रहमतुल्लाह, शुरू से छोटे जानवर ही करते थे अब भी, तो बड़ी थाली भरी, मगर जल्दी जाके देगा। मैं खैर भागम भाग गया, वहां जाके दे आया। मुझे लेके आज भी उनकी आंखों की आबदीद की, यानी आंखों के आंसू मुझे याद है। इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं वो इंसान भूलता नहीं। मुझे याद है, कहने लगे आपका शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। एक वक्त मेरा भी था इस तरह, थालियां भर भर के मैं देता था। हालात में आ गया हूं, गर्देश में आ गया, क्राइसिस में आ गया, गर्देश दौरा जरा थम थम के चलाकर हालात में आ गया, और अब मैं कुछ नहीं दे सकता। सबसे पहला पैकेज है कि ऐसे लोगों को तलाश करें, और अगर अल्लाह ने आसानी दी है, चुप करके गोश्त के पैकेट बनाए शॉपर में और फ्रिज एक दो तीन डीप फ्रीजर भर के रख दें, महीना डेढ़ के बाद देना शुरू करें, फिर मजा और है। क्यों? आप गरीब के घर दे के फारिग हो गए, मेरे पास मुझे याद है अम्मा के पास बास गरीब औरतें शापर लाते थी, ये हमारा गोश्त तो अपने फ्रिज में रख दे, हमारे पास फ्रिज नहीं है, लोग दे के जाते हैं। अच्छा, वो फन खत्म हो गया, जो फन मैंने खुद देखा अपनी नानी अम्मा को, जो फन मैंने खुद देखा कि वो गोश्त को सुखा लेते थे धागे में पिरो के, और वो साल दो साल तीन साल कुछ भी नहीं होता था, वो फन था, वो खत्म हो गया। जब से फ्रिज आया उस दिन से, एक तो बुखल आया, सखावत खत्म हो गई, और दूसरा वो फन खत्म हो गया, सारा खून खत्म। अगर आप ये कर लें तो आपको गोश्त के सदके का सवाब, कुर्बानी का इलाहदा है, गरीब परवरी का इलाहदा है, गोश्त का सवाब मिलेगा और बहुत जबरदस्त मिलेगा, बहुत मिलेगा। और अगर अपना गोश्त बचाना चाहते हैं, अगर अपना गोश्त बचाना चाहते हैं कि आपके गोश्त को हेपेटाइटिस ना खाए, कैंसर ना खाए, आपका गोश्त गुर्दे की शक्ल में पत्थरी ना खाए, डायलिसिस ना खाए, गुर्दे फेल होना ना खाए, आपके गोश्त जिगर की शक्ल में उसको कोई रोग, कोई कैंसर, कोई तकलीफ, कोई जिगर की बीमारियां यरकान ना खाए, आपका गोश्त दिमाग के भेजे की शक्ल में, दिमाग की शक्ल में, मगज की शक्ल में उसको कमजोरी वीकनेस जोर न खाए। आपका गोश्त आंखों की शक्ल में, उसको कोई रोग न खाए के अंधा कर दे। आपका गोश्त घुटनों की शक्ल में, पिंडलियों की शक्ल में, जबान की शक्ल में। फैसलाबाद की एक खातून आई, अटक अटक के बोल रही थी, कहने लगी मेरी जुबान पे कैंसर हो गया है, चंद ही दिनों के बाद ये जुबान काट दी जाएगी और फिर मैं बोल नहीं सकेंगे सारी जिंदगी की। रो रही थी, रो रही थी कि इसका इलाज उन्होंने कहा है कि अगर ना काटा तो फिर पूरे जुबान और पूरे जिस्म और पूरे दिमाग पे कैंसर फैल जाए। मैंने उन्हें कहा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिम, मैं ये कबूलियत हजरत अय्यूब की गार में मांग के आया था, जिस गार में साल हर साल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस गार में बीमार रहे, और फिर सात कुएं है जिस कुएं से नहाए और रब ने सारी बीमारियां खत्म कर दी, मैं उस कुएं से नहाया और वहां भी कुएं का पानी खींचते हुए और गार में मैंने इस दुआ को बहुत पढ़ा और अल्लाह से अर्ज करके आया कि अल्लाह अपने हबीब कमली वाले के वसीले से अपने नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दुआ की तासीर मुझे अता फरमा दे। बहुत मांगा और मुझे अल्लाह पाक ने जो तासीर अता की वो आज मैं आपको दे रहा हूं। इतना लंबा सफर किया था, इस्तांबुल से अरफा की 1.25 घंटे की फ्लाइट थी, तुर्की इस्तांबुल, फिर उससे आगे शाम के बॉर्डर पे, मुल्क शाम के बॉर्डर पे, वहां वो गार है। मैंने उनसे कहा कि ये अगर कैंसर का इलाज है कमाल है, और इसको आप पढ़ें और पढ़ें ऐसे विस्तार से। अच्छा आप मुझे खुद बताएं, हमारा गोश्त का पैकेज चल रहा था, याद रखिएगा, मैं गोश्त के पैकेज से जुबान की तरफ आया हूं तो अचानक ये वाकया याद आया। आप खुद सोचें, आप खुद सोचें कि जिसको कहा जाए कि हफ्ते के बाद तेरी ये जुबान काट दी जाएगी और जिंदगी भर तू गूंगा और इशारों से बातें करेगा, और हां एक शक्ल में तेरी जुबान बच सकती है अगर ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को पागल होके पढ़, मुझे आप सच बताएं उससे बड़ा कोई पागल होगा? और कितने विज्ञान से पढ़ेगा, और वह कितने दर्द से पढ़ेगा, और वह कितने जौक से पढ़ेगा, और वह कितनी कैफियत से पढ़ेगा। कुछ ही अरसे के बाद वो खातून आई और उसने मुझे खुशखबरी सुनाई, और यह खुशखबरी सुनाई कि उसकी जुबान ठीक हो गई। और पहले वो बोल रही थी लुकनत में, क्योंकि जुबान पे जख्म थे, अब वो बिल्कुल सही बोल रही थी जैसे बोलते हैं। फैसलाबाद की पंजाबी एक मखसूस पंजाबी है, लाहौर से थोड़ी सी हटके है, वही बोल रही थी। आप जो गोश्त लोगों को देंगे, आप जो गोश्त लोगों को देंगे, आपका गोश्त बचेगा, गोश्त की बदले गोश्त बचेगा। जबान भी गोश्त की है, गोश्त के बदले गोश्त बचेगा। चंद साल पहले की बात है कि एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि कुर्बानी कैसे की जाए, कुछ तरतीब बता दे। मैंने उससे कहा कुर्बानी के एक एक बोटी को महफूज रख और कुर्बानी के गोश्त के छेछड़ों को महफूज रख। क्यों? कुत्ते भी रजे होने, काम ही रजे होना, चील कवे परिंदे सब रजे हुए होते हैं। अब उनको महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद थोड़े थोड़े शॉपर डाल, उनके दिल से दुआएं निकलेंगे। और टुकड़े टुकड़े करके पहले से रख देना, टुकड़े टुकड़े करके सोने एक शॉपर बना, बेहतरीन शॉपर बना के दे देना। जानिए बड़े कमाल की चीज है, अगर अल्लाह ने वसत दी है, छोटा या बड़ा जानवर ज्यादा करते हैं, काम की बात है। पिछले साल हवेली में था तो मैंने अपने बेटों को कहा, बेटा गोश्त है पर दे आओ रिश्तेदारों को और उन रिश्तेदारों को जिनके यहां कुर्बानी शायद ना होती हो, सफेद पोशी। कहते थे कि हम अंदरून शहर की गलियों में सख्त गर्मी, सख्त धूप, बेचारे आए तो लाल टमाटर लेकिन खुश। क्या कहा, इतनी दुआएं दी उन्होंने, इतनी दुआएं दी कि आपने हमें याद रख, आपने हमें याद रख, आपने हमें याद रख, इतनी दुआएं दी। अगर आप गोश्त के इस पैकेज को संभाल लें, आपने देखा कि बाज ये पुलों पे खड़े लोग शापरों में गोश्त पड़े पड़े होते हैं और सर से वारते हैं, ये जरूरी नहीं है, गोश्त जरूरी है। जो मखलूक गोश्त खाती है उसको गोश्त दो, वो तुम्हारा गोश्त छोड़ देगी, तुम्हारा गोश्त छोड़ देगी। एक चोर था, वो गोश्त के टुकड़े साथ रखता था, मैं इसको हर दफा यहां रखता हूं, वो गोश्त के टुकड़े यहां साथ रखता था। एक चोर था, जाते ही कुत्ते को पहले गोश्त का टुकड़ा फेंक देता था, बस अगला कुत्ता आया उसको गोश्त का टुकड़ा फेंका, अगला आया उसको गोश्त का टुकड़ा फेंका, अगला आया उसको गोश्त का टुकड़ा, वो गोश्त में लग गई अपना काम करके गया। लेकिन वो बंदा कहने लगा कि एक कुत्ता मुझे ऐसा मिला जिसने गोश्त को मुंह नहीं लगाया, मेरे पीछे रहा वो। उसने कहा ये मालिक मुझे देता है, अगर आज ये गोश्त खा लिया तो नमक हरामी होगी। आपको इल्म है जिन्नात की गिजा खून है, जिन्नात की गिजा खून है, जिन्नात की गिजा हड्डियां हैं, जिन्नात की गिजा गोश्त है, खून गोश्त हड्डियां ये जिन्नात की गिजा है और असली गिजा है। और आप कुर्बानी के नाम पे जिन्नात को उनकी सच्ची गिजा दे रहे हैं, उनकी गिजा दे रहे। पता नहीं ये कुर्बानी के जानवर अगर अल्लाह की रजा के लिए किए जाए, शोहरत के लिए ना किए जाए, वो हदीस तो पूरी होगी, मफहूम है, मफहूम है कि कुर्बानियां भी शोहरत के लिए की जाएंगी और मस्जिदें भी शोहरत के लिए बनाई जाएंगी और हज और उम्रे भी तिजारत या शोहरत के लिए किए जाएंगे, मफहूम है। मैंने इतने लाख का बैल खरीदा, इतने लाख का बकरा खरीदा, मेरी एक मिन्नत है, इंजेक्शन वाले जानवर ना लेना। आप सिर्फ एक दिन के लिए ये सगिया में हमारा दरूद महल है, वहां हम आंखों से देखते हैं, एक दिन के लिए वहां चले जाएं। जिस जानवर के इधर भी गोश्त लटका हुआ है, इधर भी गोश्त लटका हुआ है, और उसके ऊपर रंग बिरंगे नमूने बने हुए हैं कि उनको कैसे खतरनाक किस्म के इंजेक्शन लगाते हैं, वो बड़ा जानवर है या छोटा जानवर। मेरी मिन्नत है टीकों वाले इंजेक्शन वाले जानवर न लेना। कोई बात नहीं, लोग आपको कहेंगे कि आपका जानवर कमजोर है। वो कमजोर नहीं होगा, वो असल सेहतमंद होगा, कमजोर नहीं होगा। अल्लाह की रजा के लिए चैन मारो। जानवरों के साथ तस्वीरें बना के मोबाइलों में डालें, अल्लाह को क्या दिया फिर, अल्लाह के लिए क्या दिया। इन सलाती व नुसुकी, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरे सजदे, मेरे हज, अल्लाह तेरे लिए है। तो ये अल्लाह के लिए कहां हुए, जब जानवर दिखावे के लिए हो और जानवर तस्वीरों और सेल्फियों के लिए हो। मेरी दरख्वास्त, बड़ा मुश्किल है नेकी कमाना और बचाना। ये तीन दफा आप भी दोहराएं, मैं भी दोहराता हूं, बड़ा मुश्किल है नेकी कमाना और बचाना, बड़ा मुश्किल है नेकी कमाना और बचाना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरी मिन्नत है, मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि जानवरों की तस्वीरें और जानवरों के साथ शोहरत और जानवरों के लिए भागदौड़ से मुराद इतना कीमती जानवर आप जो पालने वाले हैं उनसे पूछ लो कि इतना मोटा जानवर आम गिजा से हो सकता है, उनसे पूछ लेना। फिर यही जानवर जिसमें खतरनाक इंजेक्शन है, कैंसर, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द और शुगर का सरियाबंद है। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, बड़े दुर्वेश हैं, उनकी पेशानी पे मैं हमेशा नूर देखता हूं। चंद मुलाकातें हैं मेरी, कुछ ज्यादा नहीं। मुझे उस दिन कहने लगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, जंग अजीम अव्वल में देसी घी खत्म हो गया, वो चला गया फौजियों के पास, अवाम क्या खाए। फिर उसी अवाम के लिए ये डालडा घी देसी घी की शक्ल में बनाया गया, और जिस साइंसदान ने यह घी इजाद किया था उसने साथ लिख दिया था कि इस घी के खाने से ये नुकसान होगा, ये ख्याल करना। और उसमें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर सर फहरिस्त है, डालडा घी, डालडा घी या ऑयल, कुकिंग ऑयल। मेरी आपसे दरखास्त है कि हमने कुर्बानी को बचाना है। बहुत दिल करता है, बहुत तबीयत परेशान होती है। कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें, एक बच्चे की तस्वीर, यूं बच्चा पैदा हुआ और तस्वीर भेजी जो लगी बच्चे को नजर, और तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है। हाय हाय, मेरी अम्मा की खाला जात है, बड़ी बूढ़ी है। कहते हैं हमारा दौर तो ये था कि बच्चे का पखाना भी छुपाते थे कि सेहतमंद पखाना देख के कोई ये ना कहे कि अच्छा इसका पखाना सेहतमंद है, नजर उसको ना खा जाए। उस दौर में तो यहां तक छुपाया जाता था। काजल का और सुरमे का स्याह टिक्का लगाना हदीस से साबित है, लगा सकते हैं, मेरे पास इसकी रिवायत है। काजल का और सुरमे का स्याह टिक्का बच्चों को लगाती है ना माएं, ये लगाना हदीस से साबित है, बिदत नहीं है। मेरी दरखास्त है अपने बच्चे और जानवर को इन शोहरतों से बचाओ, मेरी मिन्नत है। और इस कुर्बानी के जानवर के जरिए सबसे पहले अबेजल कुर्बा को संभाले। अगर अल्लाह ने सहूलत दी है तो उसकी एक एक चीज की हिफाजत करें। आप क्या करते हैं, ओजरी उठा के बाहर फेंक देते हैं? नहीं, उसको साफ करें, धोएं, धो के टुकड़े टुकड़े करें, शापर बनाएं, फ्रिज में रखें, महफूज करें, फौरन किसी गरीब को ना दें। हाँ, शक है कि वो गरीब है, उसके घर आज किसी ने गोश्त नहीं दिया होगा, दे दें, लेकिन बहुत सारा महफूज रखें। एक वाक्य सुना, साला साल हो गए मेरा मंगल के दिन दर्श होता था, एक कर्नल साहब हाजिर ड्यूटी थे, उनका नाम सलीम था और सलीम अल फितरत थे, रिटायर हो गए कब के, और मेरे यहां आते थे। तो मुझसे कहने लगे कि मुर्शिद मंगल का दर्श है, मैं फिर जरा छुट्टी पे चला जाऊंगा, ईद की छुट्टियां मैंने ली हैं अपने घर में, ईद की छुट्टियों पे चला जाऊं। तो मैंने उनसे अर्ज किया, कुर्बानी है कहां? मैंने कहां करेंगे? फिर घर करूंगा। मैंने कहा आपका असल घर आप बता रहे थे हरिपुर की तरफ है, गांव में है। हाँ, मैंने कहा अगर आप गांव में कुर्बानी कर लें। कहने क्यों? मैं क्या गांव में गरीब होंगे, गोश्त बांटना आसान होगा, जिस अफसरान की सोसाइटी में आप रहते हैं सारे कर रहे होंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा, सारे ही देने वाले होंगे, और अगर देना भी पड़ेगा तो पूरी रान देनी पड़ेगी, फिर जाके नाक रहेगा। हाँ, फिर नाक मसला नाक का भी तो होता है, पूरी रान देनी पड़ेगी। ले बात तो ठीक है। मैंने उन्हें तरकीब दी, मैंने कहा आप चले जाएं और वहां जाके कुर्बानी करें गांव में। उन्होंने गांव में जाके कुर्बानी की और लोगों को गोश्त बांटा। कहने लगा आपने मेरी पहली कुर्बानी है जो बेहतरीन कराई है और मुझे एक सुकून मिला है। फिर खुद कहने लगे मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती थी, बहुत इलाज मालजा, कई कई हफ्ते बाजोकात अस्पताल में दाखिल भी रहती थी। मेरी बीवी ने एक ख्वाब देखा, वो वहीं गांव में थी मेरे साथ ही, और ख्वाब ये देखा कुछ लोग आए हैं, उन्होंने उसको एक पूरी दी है और उसने पूरी पी है और पूरी पीते ही उसको कह आ गई, और उस कह के अंदर से बिच्छू निकले हैं, कीड़े निकले हैं, मेंढक निकले हैं, कोई और मखलूक है, ऐसी उसने एकदम रेंगना शुरू कर दी, चलने फिरने वाली मखलूक। और वो माइया कहने लगी बस यही तेरे अंदर बीमारी थी, तकलीफ थी, यही थे। तो उसने पूछा ये क्यों निकले हैं? कहा कि तूने गरीबों को गोश्त खिलाया है, उनके दिल से जो आहें निकली हैं उसके अंदर से तेरे दिल से बीमारी निकल गई। कहा मेरी बीवी ठीक हो गई है, अब बिल्कुल सेहतमंद है और बिल्कुल तंदुरुस्त है और हैरत अंगेज तौर पर ठीक है। एक और वाक्य सुने, एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने उन्हें कुर्बानी के गोश्त के बारे में यही बताया कि गरीबों को, मिस्कीनियों को या ऐसे सफेद पोश लोग और खास तौर पे अपने रिश्तेदार भी, हमसाये भी, उनको देना है। उन्होंने मेरी बात पे अमल किया और कुर्बानी का गोश्त एक एक बंदे को तलाश कर करके बांटा। अमल हो गया। कुछ ही महीनों के बाद उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल का। नौजवान था, कोई 21-22 साल का, तेज चला रहा था, जवानी के जोश में, जनून में एक्सीडेंट हुआ और बच्चा बेहोश हो गया। और उन्होंने उन्होंने कहा कि इसको होश नहीं आ सकता कि दिमाग की चोट लगी और इसकी हड्डियां भी दो चार टूट गई। लेकिन सिर्फ आधे घंटे के बाद बच्चे को होश आ गया और खुद उठ के बैठ गया, कहने लगा पानी पिलाओ। हैरान, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, इस बाबे को यहीं बिठा दो, यहीं बिठा दो, ऐसा ऐसा आगे आएगा, इनको अब जरा पकड़ के रखना। तो उसने कहा कैसे होश आया, अब जरा गौर से सुनना तवज्जो से। कहने लगा बा हमने वो जो कुर्बानी के बकरे किए थे ना, और एक बैल भी किया था, यानी जो भी जानवर थे वो सारे के सारे जमा हो गए, और जमा होके जब मैं गिरा था उन सब ने मुझे अपनी सामने पीठ कर दी, किसी ने अपना सर कर दिया, किसी ने गर्दन कर दी, मुझे थोड़ी सी चोट लगी, बाकी चोटें उन्होंने सह ली और मैं ठीक ठाक हो गया। जब अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी की जाती है, लिख लो मेरी बात को, और अल्लाह की रजा के लिए सदका किया जाता है या जानवर के बड़े होने के लिए फख्र हो, और अगर अच्छा जानवर लाए हैं तो छुपाएं कि मौला रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, मौला कबूल कर ले, तेरी मेहरबानी है। ऐसा न हो कि मुंह पर मारते, माल भी गया, कबूलियत भी गई और कुछ ना बचा। अगर जो जानवर अल्लाह की रजा के लिए इस फकीर की बात को लिख ले किया जाता है, वो जानवर हमारी जिंदगी में बलाएं मुसीबतें और आफतें टलवाने का एक बेहतरीन जरिया होता है। शुजाबाद मुल्तान के करीब है, मुल्तान के करीब, नवाब शुजा दौला था उसके नाम। वहां एक खातून थी, उसका एक बेटा था, दो बंदे आपस में झगड़ रहे थे, मजदूर आदमी गरीब आदमी था, उसने उनको छुड़वाने की कोशिश की, छुड़वाते छुड़वाते एक का कत्ल हो गया। कत्ल में इसका नाम आया, कत्ल करने वाला पैसे दे के बरी हो गया, बस सारा मलबा इस पे आ गया, इसका कोई नहीं था, कौन पैरवी करे, 302 का पर्चा इस पे हो गया। जेल में केस चलता रहा हत्ता के फांसी की सजा हो गई। अब आखिरी मुलाकात करनी थी, आखिरी मुलाकात बूढ़ी अम्मा गई, गौर से सुनिएगा तवज्जो से, तवज्जो से सुनिएगा, आखिरी मुलाकात करने गए। अम्मा ने पूछा बेटा तेरी कोई आखिरी वसीयत, कहने लगा अम्मा मैंने एक वो बच्ची थी, बछड़ी कहे, गाय की बेटी बड़ी हो जाए तो क्या कहते हैं, और उर्दू में साई साहब आप बताएं, उर्दू में बताएं ना, बछड़ी या बछड़ा, बच्ची। अम्मा मैंने वो पाली थी बड़े शौक से, गाय होगी दूध पीऊंगा, अम्मा को दूध पिलाऊंगा, अब मैं तो रहा ना, अम्मा उसका अगर आज सदका कर दें, उसको जबा करके गरीबों में तकसीम कर दें, बस मेरे पास तो है ही यही, यही मेरी ख्वाहिश। अम्मा ने कहा बेटा तू मेरा सब कुछ था, तू ही चला गया तो तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। सुबह अम्मा मुलाकात करने आई तो अम्मा ने जाते ही कुछ लोगों को बुलाया, उसको जबा किया और सदका कर दिया, लोगों में तकसीम कर दिया, लोगों में तकसीम कर दिया। अलसुबह फांसी के फंदे पे जब उसको चढ़ाया और फंदा गले में डाला और नीचे से तख्ता खींचा और लाश लटकने लगी, क्योंकि पांव भी बंधे हुए होते हैं और हाथ भी पीछे बंधे हुए होते हैं। मुकर्रर वक्त के मुताबिक डॉक्टर ने जब चेक किया तो वो जिंदा था, गर्दन खिंची हुई थी, आंखें बाहर निकली हुई थी। अस्पताल के लॉ के मुताबिक, जेल के उसूल के मुताबिक अस्पताल में उसको दाखिल किया, कई दिन के बाद ठीक ठाक हो गया। और जो फांसी उन्होंने भी माफ कर दिया कि अगर अल्लाह ने बचा दिया है तो हम भी माफ करते हैं, वो तो पहले ही मुजरिम नहीं था। उसे पूछा कैसे बचा, कहने लगा जब मेरा फंदा खींचा और मेरी गर्दन में फंदा आया और मेरी सांस रुकी और मेरी आंखें बाहर आई तो नीचे बच्ची के दोनों सींग मेरे पांव के नीचे आ गए, ऐसे टेक और मैं बच्ची के सींगों के ऊपर वो जो छोटे छोटे सींग थे उसमें मेरे पांव टिके रहे। और जितनी देर मुकर्रा वक्त था मेरी हल्की हल्की सांस चलती रही और मैं वहीं टिका रहा। उसके बाद बहुत अरसा जिंदा रहा, उसकी गर्दन बड़ी लंबी थी, आंखें बाहर निकली हुई थी, लेकिन सेहतमंद जिंदगी। आप नहीं सोच सकते, आप गुमान नहीं कर सकते, या आप जो कुर्बानी कर रहे हैं सोचे, ये तो नफिल का अजर है। ये किसका अजर है? नफिल का अजर है, और ये कुर्बानी तो सुन्नत है। सारी कायनात की नफलें और उनकी बरकतें जमा कर लें, एक सुन्नत सुन्नत है, ये तो सुन्नत है। हमने इसको किसी नियत से नहीं करना, पहले गौर से सुन ले, हमने तो करना है अल्लाह का हुक्म और हुजूर का तरीका, बस खत्म। और सुन्नत इब्राहिम, उसके बाद फिर उसकी बरकतों के दरवाजे शुरू होंगे। हमने तो सुन्नत को अल्लाह का हुक्म हुजूर का तरीका समझ के करेंगे, ये जहन नशीन रखना मेरी बात को, बड़ी अहम बात है। सारे राजों में से राज, सारे नुक्तों में से नुक्ता है। यकीन जानिए, अगर कुर्बानी को अल्लाह की रजा के लिए किया जाए और कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के बारे में सोचा जाए और कुर्बानी की खाल को बेचकर गुरबा मसाकिन फुकरा को दिया जाए और कुर्बानी के खून के लिए भी सोचा जाए और उसके छिछड़ों के लिए भी सोचा जाए और उसके सिरी पायों के लिए भी सोचा जाए, हत्ता के उसकी ओजरी के लिए भी सोचा जाए, आप तो हैरत अंगेज तौर पे इस कुर्बानी के जरिए अपनी नस्लों का रिस्क बढ़वा सकते हैं। और फांसी से बढ़ के कोई मुसीबत होगी? हमारे यहां एक शेख साहब थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके आगे करके दुकान थी, चमड़े का काम करते थे। उनके मुंह में एक बोल था, कोई उनसे पैसे लेने आता या देने आता तो वो कहते थे, अच्छा ऐसा कर मुझे फंदा लगा दे, फांसी लगा दे। अच्छा ऐसा कर, अब मैं फंदा चढ़ जाऊं फांसी चढ़ जाऊं तुझे कहां से पैसे, उनके मुंह में ये बोलते कोई कबूलियत की घड़ी थी, पता नहीं घर में क्या हुआ, अपना जरबन निकाला, पंखे से बंद और फंदा चढ़ के मर गए। बोल बाजुकात कबूल हो जाते हैं, एहतियात से बोल, सोच के बोल, कोई कबूलियत की घड़ी होती है। अगर बोल भी नहीं है तो तौबा और इस्तिगफार के दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ मौला मैं गुज़िश्ता बोलों पर भी तौबा कर दो, मौला मैं मौजूदा बोलों पर भी तौबा कर दो, मौला मैं आइंदा बोलों पर भी तौबा कर दो। बोल बोल होते हैं। अगर आप कुर्बानी के जानवर के कर लेना, अब मैं आपको एक जिंदा वाक्या सुनाता हूं, आपकी मैं कहता हूं आप कांपना शुरू हो जाएंगे। ये भी इसी हफ्ते का वाक्या सुनाता हूं। मैं रूहानी मंजिल गया, मरी कोई बड़े अरसे के बाद गया, वहां से पूरा कश्मीर मुजफ्फराबाद उससे निकलते निकलते मैंने आगे जाना था बालाकोट की तरफ, तो मैं गढ़ी हबीबुल्ला से गुजरा। वहां मेरे बेटे कहने लगे हमने अपने बड़ों को हदिया भी किया वहां कब्रिस्तान में, बालाकोट के जिहाद में बड़े भी शहीद हुए थे। तो वहां एक साहब है, पिछले दफा उनका मामला यह हुआ कि उन्हें पता चला कि मैं वहां गढ़ी हबीबुल्ला आया हूं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए, वो पहाड़ पे चले गए थे, वहां से उतरे, कहने लगे आप मेरे कबाब खा लें कि गढ़ी हबीबुल्ला के चप्पल कबाब मशहूर हैं, आप खा लें। उनके बारे में मेरे एक साथी ने मुझे एक बात बताई, कहने लगे मैं उनके पास गया तो वो मार्केट सारी कबाबों की है, लोग वहां कबाब खाने जाते हैं। ये वाकया जरा गौर से सुनिएगा वरना जिंदगी पर पछताएंगे जब अभी मैं वाकया बयान करने लगा। कहने लगे मैं गया ना तो वो कहते हैं मैं तस्बीह खाने से जुड़ा हूं, तब से तस्बीह खाने से जुड़ा हूं, मेरे कर्जे बीमारियां तकलीफें मुश्किलें परेशानियां बहुत अलग हल्की है। कहने लगे कि मैं जब पहली दफा उसके बस गया था वो क्या करता था, बाजार से ना हड्डियां इकट्ठी करता था और खास तौर पे सिरे की हड्डियां, सर की हड्डियां अक्सर ये फेंक दी जाती हैं, और वो हड्डियां जलाता था, कहता था कोयले और लकड़ी की जगह हड्डी बहुत बेहतरीन जलती है, बेहतरीन कबाब बनते। तो मैंने उसकी हड्डियां जलते देखा ना, तो मैंने उससे कहा तूने तस्बीह खाने का पैगाम नहीं सुना कि आका का फरमान मेरे हुजूर का फरमान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन हड्डियों पे फिर से गिजा लगती है, अल्लाह के अमर से जिन्नात की गिजा लगती है और जिन्नात खाते हैं, तूने नहीं सुना, और तू हड्डियां जलाता है, तेरा तो रिस्क जल रहा है, तेरी तो किस्मत जल रही है, तेरा तो नसीब जल रहा है, तो क्या कर रहा है। ये अभी के सफर में मुझे मेरे एक मुखलिस ने मुझे बताया, हाँ वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा जी मैं आंदा हड्डियां नहीं जलाऊंगा। कहा जिस दिन से उसने हड्डियां जलाना छोड़ी है, जिस दिन से उसने हड्डियां जलाना छोड़ी है उसके कर्जे उतर गए हैं, वो दुकान के ऊपर एक और दुकान डाल दी है, उसके घर की बीमारियां परेशानियां दूर हो गई हैं, उसके घर के नुकसान खत्म हुए हैं और तकलीफें, और रब ने तवंगरी और मालदारी के दरवाजे खोल दिए। ये वाक्या मुझे, अगला वाक्या सुने, ये वाक्या मुझे कई लोगों ने बताया और मेरी जिंदगी में ये मुशाहदा बारहा आया। जो अब सुनाने लगा हूं। ये भी जरा गौर से सुनिएगा, बड़े काम की बात है। कई लोगों ने घर के खाने की हड्डियां, मुर्गी की छोटे या बड़े गोश्त की, जो हड्डियां हम गोश्त की हड्डियां खाने के बाद फेंक देते हैं, उन्होंने फेंकी नहीं, रखी। मेरा लफ्ज़ गौर से सुनिए, एक है हड्डियां फेंकना, एक है हड्डियां संभालना और रख किसी ऐसी जगह, बिल्लियां कुत्ते जानवर बाजार वो खाते हैं, लेकिन मेरे हुजूर का फरमान है उस पर गिजा लगती है, खास गिजा लगती और उस खास गिजा वो जिन्नात खाते, उस खास गिजा को जिन्नात खाते, उस खास गिजा को। और ऐसा ही होगा, मेरे पास कई वाकयात हैं, जिन्नात कानों में आके बोले, खाम में बोले, आमने सामने आए, नजर आके ना नजर आके, फिर सुने, जिन्नात खाम में बोले, कानों में बोले, नजर आए, नजर नहीं आए, खाम में आए। क्या अब सुने ये बात, और ये बोले कि तुम हमें गिजाएं देते हो, तुम हमें खिलाते हो, हमें शर्म आती है कि हम तुम्हें परेशान करें, मुंह खा देते आख शर्मा पे, हमें शर्म आती है, हम तुम्हें तकलीफ दे। सिर्फ वो हड्डियां जो आपने क्या करनी है, फेंक देनी है, मुर्गी की छोटे बड़े गोश्त की या कुर्बानी के जानवर की, उनको सिर्फ संभाल के ऐसी जगह रखें जहां जानवर खा जाए बेजुबान। जिन्नात के हमले, जादू के हमले, परेशानियां, ये सब टल जाते। छोटा सा अमल है और ये कुर्बानी में आप कर सकते हैं। आपने खुद कुर्बानी नहीं की, आपकी हैसियत नहीं है, कोई मसला नहीं। इसका मैंने एक पैकेज एक बंदे को बताया था, उसको बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा गली गली फिर हाथ में रख छुरी, कुर्बानी वाले दिन लोग अक्सर ओजड़ियां फेंक देते हैं, उसमें से गोबर नहीं साफ करते, और बहुत से छिछड़े फेंक देते हैं, उसमें अक्सर तो गोश्त भी साथ लगा हुआ होता है। हमारे एक पुराने बाबा जी थे, वो कसाई को कभी छिछड़े नहीं देते थे, क्योंकि हर छिछड़े के साथ आधी बोटी लगी होती थी, बस इशारा काफी है, कभी नहीं देते थे। वो कहते थे ये रख दो यहां। मैंने उनसे कहा कि आपकी कुर्बानी नहीं, आप गरीब हैं, लेकिन आप कुर्बानी का अजर भी पा सकते हैं और रिस्क और दौलत और सेहत भी पा सकते हैं। सिर्फ एक काम करें, गली गली फिरे, कपड़े भी खराब हो गए, बदबू भी होगी, लेकिन ओझड़ियां साफ करें, जहां पानी वाफिर हो वहां साफ करें खूब बहुत ज्यादा, और साफ करने के बाद उसको किसी तरह अगर संभाल सकते हैं तो संभाल लें, बाद में इंसानों को डालें या जानवरों को। मुझे वो बंदा कई सालों के बाद मिला, कई सालों के बाद, कहां का था, मंडी बहावुद्दीन के साथ एक गांव है मियावाल रांझा, वहां का था। और ये बात मैंने उसे बताई थी कोई आज से 20-22 कमोबेश साल पहले, और मुझे कई सालों के बाद मिला, और उसने कहा कि मैंने यही काम किया और रब ने मुझे मुंजी की, वहां मुंजी की फसल चावलों का कारोबार ज्यादा है, कहा कि मुझे एक ही सौदे में रब ने ट्रकों वाला बना दिया, जबकि मैं एक बोरी लेके और मेरे पास तराजू जो होता था उसमें जंजीर भी नहीं था, वो डोरियां वाला तराजू था, रस्सियों वाला, और मेरे पास बाट भी नहीं थे, पुराने ईंटों के मैंने वजन किए हुए थे, किलो बनाए हुए थे, और एक ही रेले में रब ने उठा के मुझे मलामाल कर दिया। गोश्त गरीबों को दें, रिश्तेदारों को दें, उसके छिछड़े, उसकी हड्डियां। और आप जिंदगी के आम मामूल में गोश्त की हड्डियों को संभालें। खास तौर पे आपकी शादी का कोई खाना है तो उसमें तो खाने को और गोश्त की हड्डियों को बहुत संभाले। एक काम और करना है और बड़ा जबरदस्त काम है। अभी कौन सा महीना आने वाला है? जिलहज का जकम कब है? यकम से पहले आप नाखून काट लें हाथ और पांव। कल जुमा है, सुभान अल्लाह, जुमे के दिन काटना वैसे सुन्नत है। अब इसका जो पैकेज आपको पहला मिला हुआ है वो आपको याद होगा, हाथ और पांव के नाखून काट लें, टिश्यू सफेद में लपेट लें या किसी सफेद लट्ठे में, चादर में, कपड़े में लपेट लें, और इसमें सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी। अगर आप इस महीने के, कौन सा महीना आ रहा है, कौन सा, अगर जुलहज के महीने के पहली से पहले और कल जुमे के दिन आप ये अमल कर लें, जो बीमारी है, जो रोग है और जो तकलीफ है और जो तन के ऊपर मुसीबत और परेशानी है उसकी तसव्वुर कर ले। मैं कहता हूं मैंने तो इसको जिस जिस को बताया है उसको फैज मिला है। नाखून वाला अमल किसने किया आप में से? आपने किया? कहते हैं सऊदीया में किया था, कफील खरूज नहीं लगा रहा था, एक ही दिन किया और कफील ने खरूज लगा दिया, मैं यहां आ गया। और क्या है बीमारियां और नाकामियां? ये नाकामी अब बताए, पता इसका राज क्या है? सारी मेडिकल साइंस कहती है नाखून के नीचे जरासीम रहते हैं, और रूहानियत की साइंस कहती है नाखून के नीचे शैतानी जिन्नात रहते हैं, और जो हमारी भवें हैं इसके नीचे फरिश्ते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई बंदा वजू करे और वजू के बाद जो कतरे भवों पे रह जाएं कुछ देर के बाद, अगर उन कतरों को जिस जख्म, जिस तकलीफ, जिस दर्द, जिस चोट, जिस बीमारी की तकलीफ की जगह पे लगाते हैं, वो चंद कतरों से बीमारी खत्म हो जाती है। ये तो बहुत आजमूदा है बारहा का, कई लोगों को मैं साल साल से बता रहा हूं। अब ये जो बात मैंने अभी अर्ज की है ना नाखून वाली, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, जिसके महकमे में कोई उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश चल रही हो और उस पर कोई मुकदमा बन गया हो कि इसने पैसे खाए हैं, हालांकि वो शरीफ आदमी है, शफाफ आदमी है, ये जबरदस्त अमल है। बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ये साफ कह रहे हैं, और साथ एक लफ्ज कहा है नाकामियां खत्म हो जाती, नाकामियां खत्म हो जाती। और कोई है जिसने? जी, गालियां निकालने की कहते हैं बहुत आदत थी, दो बार किया मसला हल हो गया। अब बोले अल्लाह, आप सारे ऐसे बोले जैसे ये बोलता है, हालांकि मैंने पूछा नहीं, जादू वो जो सर पे चढ़ के बोले, ऐसे ऊंचा बोला था। अब देखिए कितनी बारीक बात है, कितनी बारीक बात है। बासों का आदमी बारीक सा गुनामी हो जाता है, बारीक सा। वो कहते हैं कि गालियों की आदत थी और दो बार करने से छूट गई। यकीन जाने अम्मा नाथ रोटी पका पका के दिए जा रही थी। मैं दोनों को जानता था, एक वापडा में मुलाजिम था, एक महकमा जरात में मुलाजिम था। जिसका महकमा जरात में ताल्लुक था वो मेरे वालिद साहब के ताल्लुक वाले थे, क्योंकि बागात थे, वालिद साहब के हैं भी, तो उसमें वो बड़ा तामन करते थे, बड़े तजर्बेकार। दोनों को गालियों की आदत थी, रोटी भी खा रहे और एक दूसरे को मां की गालियां दे रहे। अम्मा ने उठाया चिमटा, वो चिमटा होता था लोहे वाला जिससे अंगारा और चिंगारी और लकड़ी अंदर करते थे चूल्हे में। आज की नस्लों को तो फिर एंटीक में दिखाए, देखा चिमटा। अम्मा लाई चिमटा, एक रखा उसको थौक थौक कि रोटियां भी पका के खिलाऊं और गालियां भी देख रहे। अम्मा आपको गालियां दे सकते हैं? उनकी गालियां इतनी पुख्ता हो गई थी उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि एक दूसरे को मां की गालियां दे रहे थे। अल्लाह इस कैफियत से इंसानियत को बचाए। ये साहब कहते हैं गालियों की आदत थी, नाखून काटा। तरीका जरा फिर सुन ले, नाखून काटे हाथों के भी और पांव के भी, पिशो में लपेटे, सामने रखे, अब अल्लाह कर तीन दफा दरोदे पा और एक तस्बीह क्या पढ़नी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ, अच्छा भाई बताओ कितने मिनट लगते हैं? पांच मिनट, तीन मिनट, बस ठीक है, तीन पांच मिनट लगते हैं। जिस अमल पे तीन से पांच मिनट लग जाए क्या वो सौदा महंगा है, बताएं तो सही। एक कहता है बीमारियां खत्म हुई और मेरी जिंदगी की नाकामियां खत्म हुई, दूसरे साहब कहते हैं मेरी गालियां खत्म हुई, और ये कहते हैं कि मेरा हाई ब्लड प्रेशर हर वक्त गालिब रहता था, गुस्सा बहुत आता था। यही बताया, गुस्सा खत्म हो गया अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से। कितनी बड़ी नेमत है। और एक और कहते हैं कि मेरा कफील जो है मेरा खुरूज नहीं लगा रहा था, उसने मुझे बांधा हुआ था और उसने मेरा खुरूज लगा दिया एक दफा करने से। और किसने क्या आजमाया, कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर था मुझे और दो तीन दफा यह अमल किया, मेरा हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। यह कल का दिन है, ऐसे आप पूरे साल में कर सकते हैं, लेकिन कल का दिन है, कल के दिन में जो कमाई है वो शायद फिर पूरे साल में ना हो। अमल फिर अर्ज कर रहा हूं, पूरे साल में करें, पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन में जो पैकेज है वो कमाल है। और किसको फायदा हुआ हो नाखून का, काफी सख्त बीमार था, एक ही दफा करने से तबीयत बेहतरीन हो गई, बीमारियां खत्म। और जादू का इलाज है और जिन्नात का इलाज है और हसद का इलाज है और नजरे बद का इलाज है, बस आप बेहतरीन नाखून काटे और नाखून काट के और उस पे एक तस्वीर इन्न लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने और किसी गमले में, किसी क्यारी में, किसी खेत में, किसी कच्ची जगह पे उसको दफन कर दे। कैसा जबरदस्त अमल है ये। पोस्ट कितनी इसकी रीच है अभी बताते हैं आपको। ये इतना ज्यादा ये देखी गई और इतना ज्यादा लोगों ने इसको पढ़ा किया कि मैं खुद हैरान हो गया कि इतना ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ। मेरा गुमान है जितना इसको लोगों ने किया तो 2-4 हजार सफों की किताब बन सकती है अगर हम जमा कर देंगे। इतना ज्यादा लोगों ने इसको आजमाया। और किसने आजमाया और क्या आजमाया? हाँ जी, तीन चार साल पहले एक साहब ने रिसाले में ये अमल पढ़ा था। उनका कहते हैं हाथ खराब था, दुनिया का कोई टेस्ट इलाज नहीं छोड़ा और वो कहने लगे एक ही दफा मैंने नाखून काट के रखे। अमल सुबह करना था, बस उस अमल की नियत करते ही और सुबह अमल भी कर लिया और हाथ में फर्क पड़ना शुरू हो गया और सेहत मिलना शुरू हो गई। आप पता, मेरी गुजारिश यह है ये छोटे छोटे अमल हमने करने हैं और इन छोटे अमल के जरिए से अल्लाह की मदद को और अल्लाह के फजल को और अल्लाह की रहमत को पाना है इस छोटे अमल के जरिए से अल्लाह की रहमत अल्लाह की मदद को पाना है। अब एक पैकेज और है जो बड़ा अहम है, जो आपको अगर ना दिया तो पछतावा रह जाएगा। वो जरा गौर से सुनना। कुरान पाक में अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया वल फज्र वल लयालिन अश्र, अल्लाह ने इन 10 रातों की कसम उठाई। रमजान का आखिरी अशरा और जिलहज का पहला अशरा, जिलहज का पहला अशरा बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। रमजान के आखिरी अशरे की फजीलत हदीसों ने बयान की और जिलहज के पहले अशरे की फजीलत कुरान ने बयान की। लबाग जल्ला शान होने ना, मैं आपको अपनी विजदान की कैफियत बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने फरिश्तों को इसके फायदे बताए कि फरिश्तों जिलहज की जो पहली 10 रातें हैं इसके ये कमालात और ये बरकतें हैं और आखिर में मेरे रब ने अपने जलाल में आके ना कसम उठा ली कि मैं कसम उठा के कहता हूं इन 10 रातों में जो मुझसे जो मांगेगा वो दूंगा, दौलत रिज़्क इज्जत सेहत खुशियां खुशहालियां कामयाबियां खैरें बरकतें राहतें रहमतें औलाद कामयाबी जो भी हमारा रोजाना प्रोग्राम चलेगा। यकुम जिलहज से रात ठीक 8 बजे और मैं इंशाल्लाह खुद अमल करूंगा, वजीफा दुआ आमीन हम मिलके ये सारा अमल करेंगे इंशाल्लाह। कहे उसको देखना और लोगों को बताना ना भूलिएगा। इस रात के किसी पहर में, अव्वल हिस्से में, दरमियानी हिस्से में, आखिरी हिस्से में अब थोड़ा सा अल्लाह से बातें कर लें, कोई तस्बीह पढ़ लें, कोई दुरूद पाक पढ़ लें, कोई सूरत इखलास पढ़ लें, कोई अमल कर ले। मुसल्ले पे ना भी बैठे बिस्तर पे कर ले, बस इस रात का कुछ लम्हा अल्लाह को जरूर दे और अल्लाह के खजानों से जरूर मांगे और अल्लाह के खजानों से जरूर लेने वाले बने। मेरी आपसे दरखास्त है इस रात के कुछ लम्हे, इस रात के कुछ लम्हे अगर आप कर लेना पूरे साल की दुआएं, सूरे साल की इबादतें और पूरे साल की कुर्बानियां और पूरे साल का निजाम वो एक तरफ है, और ये जो 10 रातें हैं ना, 10 रातों में 10 मिनट दे दे, वो जो अमल है आप करेंगे, जरूर करें। अगर आप एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ लें, चलो एक तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़ लें, या एक तस्बीह सिर्फ इस्तिग़फ़ार की पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार भी अगर बड़ा नहीं तो सिर्फ इतना पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, 5 मिनट में तस्बीह खत्म। और तसव्वुर क्या करेंगे, जरा वो तसव्वुर गौर से सुने, आपको इस तसव्वुर को सुन के ही सुकून मिल जाएगा, तसव्वुर को सुन के सुकून मिल जाएगा कि मौला अनकरीब मेरे ऊपर कोई बला, कोई वबा, कोई पकड़, कोई बीमारी, اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، اللہ میرے اوپر اچانک کوئی بجلی ٹوٹے، کوئی مقدمہ بنے، کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، ودرک الشقاء وسوء القضاء، اور مولا کوئی میرا ایسا نہ ہو جائے کہ وشماتۃ الاعداء، کہ دشمن مجھ پہ ہنسے۔ دشمن مجھ پہ ہنسے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ آپ صرف ایک تسبیح استغفار کی کر لیں، پتہ ہے مشکل، آپ اس سے پہلے کوئی عبادات کرنا چاہیں کریں، کوئی ذکر کرنا چاہیں ضرور کریں، اور تسبیح کرنا چاہیں ضرور کریں، لیکن اگر میرا مشورہ مانتے ہیں کہ اس اجتماعی عمل کے بعد اگر آپ صرف ایک تسبیح رات کے کسی بھی حصے میں بس، کیونکہ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، 10 ایک تھا، اس پہ ایک واقعہ سنا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ، ایک اور واقعہ سن لیں، یہ لمبا ہے مختصر واقعہ سنا تھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر وقت استغفار کرتا ہے، جب بھی قدم اٹھاتا ہے استغفار کرتا ہے، جب بھی قدم اٹھاتا ہے استغفار کرتا ہے، تو پوچھا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کہنے لگا میں نے اللہ سے آج تک جو بھی مانگا ملا، کہو سبحان اللہ، اللہ سے آج تک جو بھی مانگا ملا، جو بھی مانگا ملا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ ان 10 راتوں میں آپ صرف ایک تسبیح استغفار کے پڑھ لیں یا زیادہ کر لیں تو سبحان اللہ۔ ہوا یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہیں سفر میں تشریف لے گئے، ایک مسجد میں مسافر کی حیثیت سے قیام کیا، مسجد کے خادم نے ان کو نکال دیا کہ جی آپ مسجد میں نہیں رہ سکتے۔ امام صاحب فرمانے لگے میں پردیسی مسافر ہوں اور مسافر مسجد میں قیام کر سکتا ہے، اسے بڑی سختی کی۔ ایک بندہ نے دیکھا اپنے گھر لے گیا، درویشوں کی خدمت کی، سیوا کی، امام صاحب نے دیکھا کہ ہر قدم پہ ہر سانس پہ وہ استغفار کرتا ہے، ہر قدم پہ ہر سانس پہ استغفار کرتا ہے۔ اس پہ امام صاحب نے پوچھا کہ یہ بتا کہ آج تک اس استغفار پہ تجھے کچھ ملا بھی ہے؟ کچھ ملا بھی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے آج تک کوئی بھی چیز مانگی ہو نہ ملی ہو، مجھے یاد نہیں، بس ایک حسرت رہ گئی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا؟ کہا جی چاہتا ہے مرنے سے پہلے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے. فرمایا تیرا یقین بھی سچا، تیرا ذکر بھی سچا، اور تیرا وجدان بھی سچا، اور اللہ بھی سچا، اور اللہ کا حبیب بھی سچا. میرا نام احمد بن حنبل ہے، میرا نام احمد بن حنبل ہے، میرا نام احمد بن حنبل ہے، آپ مجھ سے ملاقات کر لیں. آپ اس رات، ان 10 راتوں میں میں نے تو آپ سے ایک دفعہ نا ایک جگہ ہم ایک ہمارے دوست تھے، وہ ایک مکان کا ایک چیز کا سودا کر رہے تھے. جو سودا کرنے والا ہے وہ کسی چیز پہ ٹک ہی نہیں رہا تھا، ایک بات ہوتی تو اس سے ہٹ کے پھر دوسری پہ آ جاتا. تو کہنے لگا اچھا یہ بتا تیرے پاس پاسپورٹ بنا ہوا ہے تیرا؟ ہاں. کہنے میرا ہی بنا ہوا ہے، مکے کا ویزا لگواتے ہیں. کہے کیوں؟ کہا کہ کعبے پہ جا کے ہاتھ رکھتا. کوئی کعبے پہ ہاتھ رکھے گا تو کسی کو جگہ تو کسی زبان پہ ٹکے گا. آپ یقین جان لیں، آپ یقین کر لیں کہ آپ اگر بستر پہ بیٹھ کے بھی صرف ایک تسبیح گڑ گڑا کی، استغفار کی کر، اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا مجرم، اللہ کی نظر میں میں کہتا ہوں چٹکیوں میں کام ہو جائے، اور چٹکیوں میں مسئلے حل، اور چٹکیوں میں پریشانی دور، اور چٹکیوں میں ناکامی ختم، اور چٹکیوں میں ذلت کے فیصلے عزت میں، اور مشقت کے فیصلے راحت میں، اور قرضوں کے فیصلے خوشحالی میں، اور بندشوں کے فیصلے کھلنے میں. اللہ کر دے. اب کر کے دیکھیں تو سے. یہ ہماری سوشل میڈیا میں بتایا کہ اس پوسٹ کو، جو ناخن پہ عمل کرنے والی پوسٹ ہے، 2,60,00,000 لوگوں نے یہ پوسٹ دیکھی ہے. اس کا ثبوت پڑا ہے ہمارے ابکری میں، آپ دیکھ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. 2,60,00,000 لوگوں نے یہ پوسٹ دیکھی ہے. کون سی؟ ناخن ہاتھ پاؤں کے کاٹے اور ایک تسبیح. ایک تسبیح کیا پڑھیں گے؟ آج اگر آپ یہ ایک تسبیح کل پڑھ لیں، ذی‌الحج کل پڑھ لیں اور کل عمل کر لیں، تو آپ کی تو میرے خیال میں کتنے وارے نیارے، کتنی مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور کتنی ناکامیاں ختم، اور کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں. میرا خیال میں تو آپ یہ فیصلہ کر لیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ رات کو صرف 10 راتیں آپ کیا کر لیں؟ صرف استغفار. اچھا تسبیح بھی نہیں ہے نا امت کے لیے، رعایتیں ہی رعایتیں ہیں. سوتے ہوئے وضو ہے یا نہیں؟ جس حالت میں ہیں انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ دنیا کا بڑا مجرم، دنیا کا بڑا کالا، اور دنیا کا بڑا خبیث لعین، بس میں ہی سب کچھ ہوں. انی کنت من الصالحین. اے اللہ مجھ سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. اب مولا ہماری دنیا کا اصول ہے جو اعتراف جرم کر لیتا ہے، اے اللہ اس کی سزا یا تو معاف ہو جاتی ہے یا تھوڑی ہو جاتی ہے، یا معاف ہو جاتی ہے یا تھوڑی ہو جاتی ہے. اے اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرتے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور اگر اللہ پاک یاد دلا دے تو استغفر اللہ العظیم اس میں بڑی طاقت ہے, استغفر اللہ العظیم اس میں بڑی طاقت ہے. ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, ایک تسبیح پڑھ لیں, دس تسبیح پڑھ لیں, بیس پڑھ لیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آج تو ایک پڑھ لیں, کل دس پڑھیں, پرسوں ایک بھی نہ پڑھیں, اور پھر پڑھیں بھی تو گڑ گڑا کے نہ پڑھیں. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو, چلے کتے پر رب نہ ملیا, او کی لینا چلیاں چ وڑ کے ہو, بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمتا. کسی فقیر کا کسی فقیر سے نسبت ہو اس کے بغیر نہیں, بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمتا, پمے لال ہووے کڑ کڑ کیا, پمے لال ہووے کڑ کڑ کیا. ہم تو فیصلہ کر لیں کہ ان راتوں کو روشن بنانا ہے, اور اللہ کو عرض کرنا کہ مولا اب تو مان جا, تو نے قسم اٹھائی ہے, اب تو مان جا, اپنی قسم کی لاج رکھ لے, اب تو مان جا, تیری رحمت قریب ہے, متوجہ ہے, اے اللہ میرے کام کر دے, میری مشکلیں ٹال دے, میری ناکامیاں دور کر دے, اور مجھے ذلت کے لباس سے نکال کے عزت کے لباس پہنا دے, اب تو مان جا. اللہ سے منوانا ہے, اور یہ دس راتوں کا عمل لوگوں کو بتانا ہے, اور یہ ناخون کا عمل لوگوں کو بتانا ہے. میری وجہ سے کسی کی مصیبت ٹل جائے, میری وجہ سے کسی کا دکھ درد دور ہو جائے, اور میری وجہ سے کسی کی الجھن ختم ہو جائے, لوگوں کو بتانا ہے, لوگوں کو اس کو تیار کرنا ہے, ایسا کہ لوگ بیتاب ہو جائیں. کتنے فائدے لوگوں کو بتانے ہیں, لوگوں کو فائدے بتا کے تیار کیجئے گا, ایسے نہیں, فائدے بتا کے تیار کیجئے, ایسے نہیں, فائدے بتا کے تیار کیجئے, ایسے نہ کیجئے گا. ایک اور عمل ہے, وہ آپ اگر کر لیں, یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے, اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے, یہ سب کے لیے ہے. ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں, ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے, بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں, لیکن شرط یہ ہے, ذرا غور سے سنیے گا, یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے, یہ قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے, اور کسی عمل کے لیے نہیں, اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے. اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں پھر اس کی وضاحت کروں گا, اس کی وضاحت پھر عرض کروں گا کہ آپ نے خود قربانی کی ہے یا آپ کو قربانی کا گوشت ملا ہے. اللہ اکبر, اس کی ترکیب ذرا غور سے سنیے گا. اب کرنا کیا ہے, اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے یا شہید ہو, بس. بڑا زبردست عمل ہے, اور مجھے یہ یاد دلائیے گا, میں آئندہ ہر سال اس عمل کو بتایا اور دہرایا کروں گا یاد دہانی کے طور پہ. یا شہیدوں کا عمل, ایک بوٹی یا گوشت کے ٹکڑے پہ 313 دفعہ پڑھیں, اور اس پہ لگتے ہیں صرف 20 منٹ یا 15 منٹ. اور آپ کو علم ہے کہ جس بندے کو چھینک آئے اور وہ اپنی زبان کو دانتوں پہ پھیرتے ہوئے صرف 3 دفعہ یا شہید ہو پڑے تو کیا فائدہ ملا کسی کو؟ کسی کو کیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں سر درد نہیں ہوئی، ان کو یہ فائدہ ہوا. دانت میں کھور ہے یا شہید ہو پڑا، درد ختم ہو گیا. سمجھ آئی؟ دانت میں کھور ہے، کھوڑ نہیں، کھور ہے، لاہوریا بول رہا ہے. یا شہید و پڑا، پڑھا نہیں، ظلم کی انتہا ہے. پہلے بھائی جان تھا، پھر بھائی جان تھا، پھر پین ہے. اللہ کا نام لے، خدا کا خوف کر، یہ کہاں سے آیا ہے؟ پہلے بھائی جان تھا، چلو سبحان اللہ، پھر بھائی جان تھا، اب پین آ گیا. یا کریم. ایک دم میں گیا، ابھی یاد رکھیے گا، کراچی. مجھے کراچی والا کہنے لگا حکیم صاحب لاہور کہنے بار بار جائیں، بار بار جائیں، اس کا کیا مانا ہے؟ گڈی بار بار جائیں، ایتھنی اتارنا، گڈی بار بار جائیں، کہنے اس کا کیا مانا ہے؟ میں کہ یہ لاہوری راز ہیں، رہنے دیں. کراچی والا مجھ سے کہنے لگا بار 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 بار. کہتے ہیں کھوڑ تھا اور یہ پڑھا، چھینک جب بھی آئے، چھینک جب بھی آئے، 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ اس کے دانت موت تک سلامت رہیں گے انشاءاللہ. سر درد کا علاج ہے پرانے سر درد کا. اور دانتوں کے امراض، خون، پائیریا، ماسکورا، اور کیا فائدہ ہوا کسی کو؟ مسوڑوں میں خون پہلے زیادہ آتا تھا، کہتے ہیں کم ہو گیا. آپ کہتے 6 مہینے سے جب سے میں نے عمل شروع کیا دانتوں کا کبھی درد نہیں ہوا، اور 3 بار جب بھی چھینک آئے زبان اپنے دانتوں پہ پھیرتے ہوئے صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے کیا؟ کیا؟ یا شہید ہو، یا شہید، یا شہید. اب پڑھیں، اب بتائیں کہ اب 313 دفعہ اگر قربانی کے گوشت کا ٹکڑا ہو یا بوٹی ہو، آپ نے خود کیا ہو یا کہیں سے ہدیہ ملا ہو، اور اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اگر اس کو کر لیں، اب اس کے فائدے سنیں. اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں. اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل، کوے، کتے، بلیاں، جانور، اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال دیں، ان کو ڈال دیں. اس دوران ایک واقعہ یاد آیا. ایک جگہ میں صحرا میں گیا تو صحرا والوں نے بکری ذبح کی، اور بکری جب ذبح کی تو انہوں نے سری پائے پھینک دیے، کون جلائے، کیا کرے. میں نے ان سے کہا کہ سری پائے جو ہے وہ آپ نے کیوں پھینک دی؟ ان میں ایک بابا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، نمبردار، اللہ وسایا اس کا نام تھا، داڑھی کو، موچھوں کو وہ مہندی لگاتا تھا. بابا فوت ہو گیا. اس نے مجھے ایک بات کہی اور وہ بات کتابوں میں مجھے تصدیق کے ساتھ ملی. کہا کہ پیر سیاں اتھا کو میاں ہستیاں ہی ہونے جرے نظر نہیں آ دیا، ول ہونا دے توفے تحیف دینے سے نہ تو ول ساکو کھا ویسا. اگر سارا کو جسا خود کھا ویوں، سب کچھ اگر ہم خود کھا جائیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کھاتے ہیں ورنہ ہمیں کھا جائیں. اب یہ گوشت کا مقصد سمجھ آیا؟ अच्छा, अब आप कहेंगे कुर्बानी में तो इतना गोश्त, इतने छिछड़े, इतनी सीरियां, इतना कुछ है, लेकिन मैं कहूंगा खुद छीनना और बात है, हाथ से देना और बात। अब नुक्ता समझे, एक है खुद उठा के खा लेना, एक है गिरा पड़ा खा लेना, एक है आप अपने हाथ से अल्लाह के मुबारक नाम से उसे बाबरकत बना के दे। अब खाएगा कौन? ये चूड़ा खबीस काफिर जिन तो खा नहीं सकता, नेक दुर्वेश अल्लाह का वली जिन खाएगा और वह आपका मुहाफिज बन जाएगा, आपका गार्ड बन जाएगा और आपका साथी बन जाएगा। कई वाकया जो हमारे बड़ों ने इसके मुशाहदात तजर्बात वाकयात में फवायद लिखे हैं, अब वो फवायद जरा सुनते जाइएगा, वो सारे फायदे आइंदा साल भी इस तरह हम लिख के रखेंगे सामने और लोगों को बताएंगे। जो फायदे हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गों ने इसके लिखे हैं, इसके गोश्त जिसपे अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक और 313 बार या शहीद। पहला फायदा ये लिखा है कि जो बंदा ये अमल करके बेजुबान जानवरों को ये डालेगा, बस लफ्ज इतना है, बेजुबानों को डालेगा, तो अल्लाह पाक जल्ल शान हो उसे बेजुबानों की दुआओं में हिस्सा अता फरमाते। बेजुबान दुआएं भी देते हैं, बददुआएं भी देते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास तो बड़े वाकयात, बड़े मुशाहदात। शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक खिंजीर, एक कुत्ता, एक इस तरह का जानवर गिलाजत में लिथड़ा हुआ, गैब से आवाज आई, मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो इसकी खिदमत करो, सर्दी में भूख में है। उन्होंने खिदमत की, रब ने उसकी बरकत से रब ने विलायत का ताज दे दिया। मुफ्ती जैनुल आबदीन साहब फैसलाबाद वाले एक दरवेश थे, फरमाने लगे मैं घर गया तो मेरा बेटा बुखार में तड़प रहा था, बुखार में, तो मेरी बीवी ने कहा दवाई लाए। मैं वहीं खड़े कदमों वापस गया, सख्त सर्दी देखा तो एक कुत्ते का बच्चा नाली में ठंडी में तड़प रहा था और चीख रहा था। मैंने बाजू किया ऊपर और कुत्ते के बच्चे को लिया, घर आया और बीवी से कहा पानी गर्म कर, पानी गर्म किया, उसको धोया, पुराने कपड़े रुई से खुश किया, आग पहुंचाई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कपकपाहट उधर खत्म होती गई, उधर मेरे बच्चे की कपकपाहट होता। हाँ, दुआएं बेजुबानों की बड़ी लगते हैं और बद दुआएं भी बड़ी लगती बेजुबानों। एक कबूतर बाज में, उस दिन मेरे सगे चचा के बेटे फौत हुए, कबर में उतारा उन्होंने, हर बंदों को वो कबर में उतारते हैं, कहने लगे मैंने उस बंदे को खुद देखा, उसने एक बंदे के कबूतरों को जहर दी थी, कबूतर उसके बाजियां जीत जाते थे, जहर दी थी। तो फरमाया कि उस कबूतर सर खुजाते थे और सर खुजाते खुजाते मर गए और वो मौत तक सर खुजाते खुजाते मर गए। जानों की दुआएं भी लगती हैं, बद दुआएं भी लगती हैं। हमारे यहां एक साहब होते थे, घोड़ों की रेस कराते थे और घोड़ों की लड़ाइयां भी कराते थे और घोड़े एक दूसरे को काटते थे और रेस में घोड़ों को बहुत मारते थे। जब मौत का आखिरी लम्हा पहुंचा तो हाय करते थे, कहते थे मेरा घोड़ा यहां मुझे काट गया, ओए बचाओ इसको, घोड़े को। वो कहते थे कोई घोड़ा नहीं है यहां, करिए खड़ा, ये देखो इधर करते थे, इधर ने काटा और इसी हालत में हाय करते करते मर गया। और जब मैयत नहलाने लगे, जहां जहां वो कहता था वहां घोड़े के काटे के दांत मौजूद थे, घोड़े के कांटे के दांत मौजूद थे। बेजुबानों की दुआएं लगती हैं, बेजुबानों की बद्दुआएं लगती हैं, ये सच है, ये हकीकत है, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। उनकी बद्दुआएं भी लगती हैं, उनकी दुआएं भी लगती हैं, उनकी बद्दुआएं भी लगती हैं, उनकी दुआएं भी लगती हैं। तो इसे गोश्त का पहला फायदा जरा गौर से सुनिएगा, जो इस गोश्त पे 313 बार या शहीदों पढ़ के बेजुबानों को देगा, तो पहला फायदा है कि उसको क्या फायदा होगा। हाँ भाई, क्या बताया मैंने? बेजुबानों की दुआओं में उसका हिस्सा शामिल हो जाए। अब फायदे जरा सुनते जाइएगा। दूसरा फायदा यह है कि जो बंदा इसको पढ़ के बेजुबानों को हदिया सदका करेगा, अल्लाह पाक जल्ला शानहू को उसको ना कहानी ऐसी आफात से बचाएंगे जिससे उसका कोई उज्व मुअत्तल हो जाए। उज्व मुअत्तल से मुराद बहरा हो जाए, कान आंख से अंधा हो जाए, या लूला लंगड़ा, या टांग कट जाए, हाथ कट जाए, आंख निकल जाए, या जुबान कैंसर की वजह से किसी वजह से कट जाए, या बाजू या उंगली, यानी अल्लाह पाक उसके जिसे पुराने बाबे कहते थे अल्लाह नूर बाजू सलामत रखना, नूर बाजू, नूर से मुराद आंखें और बाजू से मुराद हाथ पांव जिस्म आसा। जो ये अमल करेगा अल्लाह उसके नूर बाजू सलामत रखेगा। कितना बड़ा फायदा है। और ये साल के बाद ये बाबरकत अमल आने वाला है, साल के बाद ये बाबरकत अमल आने वाला है, और इस बरकत वाले अमल की तासीर कमाल है और बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब तीसरा फायदा सुनिए, जो शख्स इस अमल को किसी उज्र की नियत करके करेगा उसका वो उज्र ठीक हो जाएगा। मसलन गुर्दों का मरीज है, तो गुर्दों के बदले अल्लाह इस गोश्त को वो गुर्दों वाला गोश्त ठीक हो जाएगा। जिगर का मरीज है, किसी भी तकलीफ जिस्म में कोई तकलीफ है उस तकलीफ की नियत करके करेगा अल्लाह उसके बदले वो तकलीफ ठीक कर देगा। और चौथा फायदा अगर औरत बे औलादी की नियत करके करेगी, या मां करे और बेटियों और बेटों की औलाद की नियत करके करे कि मौला अभी ये जवान नहीं हुए, या जवान हो गए हैं शादियों के काबिल हैं, या शादी हो गई हैं, तो इनकी नस्लों को बे औलादी के दाग से बचाना, अल्लाह उनको औलाद और उनकी नस्लों को औलाद से इंशाल्लाह नवाजेगा। कितना जबरदस्त अमल है। और अनोखा फायदा बताओ जो मुझे मिला, मिलने से मुराद जो मुझे सुनने में मिला, पढ़ने में मिला, इसका अनोखा फायदा वो ये है कि जो बंदा जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पे ये अमल करेगा अल्लाह पाक उतना बड़े सोने का टुकड़ा उसे अता करेगा, उतना बड़ा। और दूसरी, एक और बुजुर्ग साथ बैठे थे, उन्होंने ये बयान किया, दूसरे ने बयान किया, और मैं कि उतना बड़ा अल्लाह उसको रिस्क उतना वसी अता फरमाएगा। इसका दूसरा माना ये है कि जरूरी नहीं सोने का डला, सोने का टुकड़ा, सोने का पीस मिले, अल्लाह पाक उतना ज्यादा उसको वसी रिस्क अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे। اتنا بڑا رزق اللہ اس کو عطا فرمائے. اگلا فائدہ سنیں اور بہت زبردست فائدہ ہے. جو شخص اس کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا, نسلوں کے نصیب اور مقدر کر کے نیت, نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا, اللہ اس کی نسلوں میں فقر فاقہ غربت اور تنگ دستی, اللہ اس کے نسلوں کو فقر فاقہ غربت اور تنگ دستی سے بچائیں گے, تنگ دستی سے بچائیں گے. ایک مائی تھی کھیت میں کام کر رہی تھی اور ایک سائل آیا منگتا ہوا مفلوک الحال. اس نے کہا کچھ دے دے. اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کا کھانا درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا. وہ کہنے لگی یہ کھانا لے جا, میرے پاس یہی ہے, آج بھوک ہی رہ جاؤں گی. وہ کھانا لے کے چلا گیا. اس کا بچہ ساتھ سو رہا تھا. بھیڑیا آیا اور اس نے اس کے بچے کی گردن میں منہ ڈالا اور منہ چلا گیا. اس نے تھوڑا سا گھسیٹا بھی صحیح اور عورت پیچھے بھاگی اور بھیڑیا چھوڑ کے چلا گیا. اور بھیڑیا دور جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے زبان حال سے باقاعدہ بولا, کہنے لگا بھیڑیا تو نے ایک بھوکے کو لقمہ دیا اور تو نے اس کا منہ بھرا, اللہ نے میرا لقمہ چھین کے تجھے دے دیا. یہ بچہ میرا لقمہ تھا اور میرے منہ سے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا. چھوٹا سا بچہ تھا. آپ کو علم ہے چھوٹے سے بچے کو تو بڑے بڑے بلے کھسیٹ کے لے جاتے ہیں. واقعات کبھی سنے کسی نے؟ میں نے, میرے پاس آئے ہیں. بڑے بلوں سے بھی بچے کو بچانا, چھوٹا بچہ مہینے کا چند دنوں کا, بڑے بڑے بلے اس کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں, اس کو چیر لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں بچے کو. تو بھیڑیا تو پھر اتنا بڑا بھیڑیا ہوتا ہے. جو یہ گوشت کرے گا, لقمہ دے گا, اللہ اسے آفتوں کے لقموں سے بچائے گا, مصیبتوں کے لقموں سے بچائے گا, تکلیفوں کے لقموں سے بچائے گا اور اسے اللہ پاک رزق کے لقمے ہمیشہ عطا فرمائے گا. وسعت کے لقمے, رحمت کے لقمے اللہ اسے ہمیشہ عطا فرمائے گا. عجب فائدے ہیں اس کے, عجب کمالات ہیں. اس دفعہ کی قربانی کی عید پہ میری ایک منت ہے, میں پھر عرض کروں گا, جانوروں کو شہرت کا حصہ نہ بنانا اور ٹیکے اور انجیکشن لگے جانور نہ لینا. اتنے موٹے کہ فطری غذائیں اس کو اتنا موٹا نہ بنا سکے. میری آپ سے درخواست ہے, میڈیکل کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, تو یہ میرا شعبہ ہے. ٹیکے لگے بڑے بڑے موٹے جانور, اتنے لتھڑ, اتنے کہ ان کے گوشت لٹک رہے ہیں, گوشت لٹک رہے ہیں, اور پھر بیٹھنے میں بھی پاؤں یوں کر کے بیٹھے, سیدھا نہ بیٹھ سکے. اتنا گوشت نہ لینا ایسا جانور, میری منت ہے. عام نارمل صحت مند جانور لینا. دوسری منت ہے جانوروں کی تصویریں, فوٹو, شہرت, ان کو سڑکوں پہ لے کے پھرنا, ان کا دکھاوا کرنا, کہیں رب منہ پہ نہ مارتے. ایک بزرگ تھے, ذرا میری طرف دیکھنا, وہ دعا کر کے نا ایسے ہاتھ منہ پہ, نماز پڑھ کے ایسے ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے یہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے, یہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے, یہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دیجیے. بس میری منت ہے آپ سے, اگر قبول ہو گیا تو مصیبتیں ٹل گئیں, بلائیں ٹل گئیں, تکلیفیں دور ہو گئیں. اگر قبول نہ ہوا تو مال بھی ضائع ہوا اور گوشت بھی ضائع ہوا. ایک تو انجیکشن لگے, और फैशनी जो जानवर है ना करो कुर्बानियां, महंगे भी होते हैं और सेहत भी नहीं होती। अगर अगर अभी आंखों से देखना है, ये जहां जहां मंडियां लगी हैं वहां जाके सिर्फ थोड़ी देर उस जगह बैठ जाए जहां जानवरों को चारा वगैरह करते हैं, वो जानवरों को टीके लगा रहे होते हैं। आंखों से मैंने भी देखा, किस किसने देखा आंखों से टीके, हाथ खड़े करो, ऊंचा हाथ खड़ा करो, इतने लोग तो मौजूद हैं। और खतरनाक इंजेक्शन जिसके साइड इफेक्ट हेपेटाइटिस, कैंसर और बड़ी खतरनाक बीमारियां, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और पता नहीं क्या कुछ। और आखिरी चीज फिर दरखास्त करूंगा कि अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप डीप फ्रीजर बड़े बड़े तैयार रखें, पहले दिन गरीबों को ना दें। हाँ, देखें जो गरीब ऐसा है जिसे पहले दिन नहीं मिला उसे दे दे, वरना संभाल के रखें। जब वो सब का गोश्त खत्म हो जाए ना, फिर गरीबों को गोश्त दे, बड़ा दिल ठंडा होगा। इस पे एक मैं खुशखबरी सुनाता हूं, इस पे एक खुशखबरी सुनाता हूं। हदीस में आता है जो किसी मुसलमान को अचानक खुश कर दे उसका बदला जन्नत है। अचानक खुश कर दे, अचानक खुश कर दे, उसका बदला जन्नत है। आप किसी को अचानक खुश कर दे, गरीबों को पहले दिन दे दिया, उन बेचारों के घर फ्रिज ही नहीं होती, अगर होती है तो छोटी सी बर्फ जमाएं, दूध रखें, पानी रखें, क्या रखें बेचारे, बड़े बड़े डीप फ्रीजर ले लें। मैंने फिर कहा था इन्वर्टर ना लेना, मैंने तजर्बा किया हुआ है, ना लेना, मजबूत डीप फ्रीजर लें, उनको संभाल के रखें, गरीबों की नियत करके। वो डीप फ्रीजर नहीं है, वो रिस्क के संदूक है, वो दौलत के संदूक है। हाँ, दौलत के संदूक, वो हीरो और जवाहरात के संदूक हैं। और अगर आपने गरीबों से बचा के आपने लिए रखा कि सारा साल खाऊंगा, खतरा है कि मुसीबतों और बीमारियों के संदूक न बन जाएं। और अगर आपने मखलूक खुदा के लिए रखा तो वो दौलत का संदूक है, वो रिस्क के संदूक है, वो उस्सत और दौलत और इज्जत के संदूक है। अगर आप ऐसे फैसला कर लें, अल्लाह पाक बड़ा करीम है, रिस्क दौलत इज्जत के फैसले कर देगा। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदों का ख्याल रखता है, अच्छा मेरे बंदों का ख्याल रखता है, उनका रोजी रोटी पहुंचाता है, उनका रिस्क पहुंचाता है, बड़ा सखी बनता है, जाइए ले जा, यहां ले जा। यहां फिरोजपुर रोड पे एक साहब ने खैर के काम के लिए उस दौर में 9 करोड़ लगाए, मैं खुद बैठा था, उनके मुंह से मैंने सुना खुद, कह लगे अल्लाह ने उठा के ने मुंह पे मार दिया, जा ले जाइए, मुझे 9 करोड़ का डबल से ज्यादा एक ही बिजनेस में मुनाफा हो गया। हालांकि मैंने इस नियत से नहीं किया था, मैंने तो अल्लाह को दिया था और अल्लाह की रजा के लिए किया था। अल्लाह कहे जा ले जा, हमें तेरे माल की जरूरत नहीं है। हल जजाउल एहसान इल्ला एहसान, हम तो एहसान के बदला एहसान बताते, या ले जा। अगर अल्लाह तौफीक दे तो ये तरतीब बना ले। आज के पैकेज बहुत जबरदस्त है, आज के पैकेज बहुत बाकमाल है। नाखून कल काटेंगे, भूलेंगे तो नहीं, पहली फुर्सत में हाथ और पांव के नाखून। और एक खतरे की बात बता दूं, मैं खुशखबरियां ज्यादा सुनाता हूं, खतरे की बातें नहीं बताता, लेकिन बताऊंगा, आज बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं रिस्क आपसे लूटा रहे, और एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आपके गले पड़े। फिर इसका मतलब यह है कि आप फौरन जल्दी जल्दी बताएं कौन चाहता है, हाथ खड़ा करें। कई हाथ खड़े हुए हैं, एक नहीं हुआ। और ये इसलिए नहीं है, ये गफलत से बैठे हैं, ये जज्ब और इश्क की निशानी है कि इतना गुम बैठे हैं। गुम कर गुमा या करो रहम, ऐसे गुम बैठे हैं अपने वजूद की खबर ही नहीं। तो मैंने क्या बताया, जो ये चाहता है कि एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत उसके गले पड़े, और क्या बताया, रिस्क के दरवाजे बंद हो जाए। हर वक्त जहन पे टेंशन, मुसीबत और तकलीफ सवार रहे ना, ये भी पैकेज आप दे रहा हूं, नाकामियां और परेशानियां उसका पीछा करें, घरेलू झगड़े, लड़ाइयां, मुसीबतें, तकलीफें हर वक्त उसका इंतजार करें, तो वो कभी हाथों के नाखून तो काटे, पांव के ना काटे। जितना जिसके पांव के नाखून बढ़े हुए होंगे, और अक्सर तजर्बा है लोग हाथों के नाखून पे नजर रखते हैं, पांव के नाखून या जुराबे या जूता छुपा लेता है, या जूता या जुराबे छुपा लेता है पांव के नाखून, या जूता या जुराबे पांव के नाखून छुपा लेता, और वो नहीं काटते। चलो कल काटने का मौका मिल गया, और आइंदा भी काटते रहेंगे। कल काटने का मौका मिला और आइंदा भी काटते रहेंगे, क्या ख्याल है, कैसे पैकेज मिले आज? बेहतरीन है। अगर इन पैकेजों को आज हम जुदा जुदा कर लें तो बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज नेमतें और तोहफे आज अल्लाह की तौफीक से आपने पाए हैं। अगर इन नेमतों और इन पैकेजेस को अगर हम अलग अलग कर लें तो बहुत बहुत चीजें मिली, बहुत चीजें मिली। अब मुख्तसर से ऐलानात हैं, बहुत तवज्जो से, और आखिरी दुआ का बड़ा कीमती वक्त आ गया है, बहुत दुआ का। आज दर्श मुख्तसर कर दिया, बस ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 2 घंटे, ज्यादा नहीं। मुझे एक बंदा कहने लगा, हकीम साहब एक आम खाता हूं, शुगर का मसला है, वो चौन सा रसोली होता है बड़ा 1.25 किलो वाला, वह कह रहे एक शुगर का मसला है, एक आम खाता हूं, बस एक। और एक साहब थे हमारे, वो आधी रोटी खाते थे, बाकी 3-4-5 डिशें बोटियों की खा जाते थे, कसम उठा के कहते थे, और कसम भी कौन सी खाते थे, कहते रब काबा दी कसम है, आधी रोटी खाता। तो सही बात है, आज मुख्तसर साहब ऐसे बात हुई है। अब मेरे चंदे का वक्त आया है, और दुआ का कब बड़ा कीमती वक्त है, मुझे मेरा चंदा चाहिए तस्बीह खाने का। हामीम ला युनसरून, सख्त तसव्वुर मेरा, मेरी नस्लों का, इस सारे निजाम और मेरे साथियों का पूरा तसव्वुर करके। हामीम ला युनसरून 313 बार, बहुत तवज्जो ध्यान से, बहुत तवज्जो ध्यान से। अवल आखिर दुरूद पाक, और इस तरह एक तस्बीह या 11 बार या हफीज हो या सलाम, मेरा चंदा है, जरूर दे दे। और अगर अल्लाह पाक तौफीक दे तो मखतूम साहब वाला अमल भी दे दे, और हिफाजत वाली दुआएं और रोजे भी, ये मेरा चंदा है। और दूसरी चीज ये है कि ईशा की जमात अभी यहां होगी, जिसकी ईशा की जमात रह जाए नीचे हुसैनी हाल में फिर होगी, वहां पढ़ ले। खिदमत और इबादत के लिए तस्बीह खाने में वक्त गुजारे, बूढ़े हजरात जिंदगियां वक्त करें, खवातीन हर हाल में दर्श और दम में शामिल हो सकती हैं। तस्बीह खाने में 3 दिन गुजारे और अपने मसाइल हल कराएं। تسبیح خانے میں خواتین کے لیے جمعے کی نماز کا اہتمام ہے، وضو کے لیے اپنے جوتے استعمال کریں، اور ابھی اٹھیں تو فوراً اپنی جیبوں اور موبائلوں پر بہت توجہ اور نظر رکھیں، کوئی ہماری غفلت سے گناہگار نہ ہو جائے۔ پارکنگ میں تعاون کریں، یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی۔ 29 جولائی بروز جمعرات، یاد رکھیے گا، تسبیح خانے درس میں 5 انمول موتی حضرت عثمان غنی کی نسبت سے 5 انمول موتی ملیں گے، دولت، عزت، پاکیزگی، برکت اور نسلوں کے مقدر کے لیے۔ تسبیح خانے میں چھوٹی موٹی خدمت، پلمبر کی، پینٹ کی، بجلی کی، مستری کی، لکڑی کی، کسی چھوٹی موٹی خدمت نکلتی رہتی ہے۔ اپنا نام ٹیلینار کے نمبر پہ موبائل نمبر بھیجیں گے، اس چھوٹی چھوٹی خدمت میں ضرور حصہ ملائیں، کبھی کوئی نل کا ٹونٹی خراب ہو جاتی۔ اسم اعظم کا روحانی دم اتوار 18 جولائی فجر کے بعد شفائیہ دعا، کشف المحجوب کا حلقہ ضرور شامل ہو۔ ذلحج کی 10 راتیں میں تمام مرادیں پائیں۔ ذلحج کی پہلی رات 8 بجے ابکری کے سوشل میڈیا پہ اس پروگرام میں ضرور شامل ہو۔ ستمبر 2021 کا جو شمارہ آ رہا ابکری کا، اس میں علامہ لاہوتی کا حروف مقطعات کا ایک خاص نقش اور عمل شائع ہو رہا، اس نقش کو ضرور حاصل کریں اور ضرور جانیں ستمبر کے رسالے میں۔ اور ایک 3 نقش کا ایک مجموعے کا تعویذ میں نے لکھنے کا عرض کیا تھا، اس کا نمونہ فیس بک واٹس اپ پر موجود ہے، ضرور لکھیں۔ 4 ستمبر بروز ہفتہ صبح 9 بجے کاغان کا درس ہے، چیف آف کاغان کے گھر، 4 ستمبر صبح 9 بجے ہفتے کے دن۔ ملک بھر میں تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے وکلاء، جج، اپنا نام، تمام موبائل نمبر ٹیلینار کے نمبر پہ لکھیں، کیونکہ یہ طبقہ انصاف کا ترازو تھامے ہوئے ہے، ابکری انہیں روحانی طاقت دینا چاہتا ہے۔ ایک خاص خدمت جو میں آپ کو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں، خاص خدمت ہے کہ مجھے پوری دنیا میں 1100 دیوانے مستانے چاہیے جو دن رات ابکری کے واٹس اپ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور یوٹیوب چینل کو ابکری کو پھیلانے کے لیے، واٹس اپ کے لیے دیوانے چاہیے، جو دن رات یہ خدمت کریں۔ ایسے دیوانے جو لوگوں کی مشکلوں اور پریشانیوں کو سمجھیں کہ کوئی بندہ موبائل کھولے تو اسے کوئی ایسی پوسٹ مل جائے اور اس کی دنیا آخرت سنور جائے اور اس کے دکھ درد دور ہو جائے۔ مجھے ایسے دیوانے 1100 چاہیے، آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ بعض لوگ مرشد سے اپنا گہرا تعلق مختلف عنوانات سے جوڑ کر لوگوں کو غلط فہمی اور بدگمانی میں مبتلا کرتے ہیں، ان بن بنیاد باتوں پر توجہ نہ کریں اور ٹیلینار کے نمبر پہ اطلاع دیں۔ حجویری محل میں پودے لگانے اور بچانے کی مہم کو نہ بھولیں، اس احساس کو زندہ رکھیں۔ اور خواتین کے تسبیح خانے کے دروازے کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی جگہیں رقم سے نہیں، دعا اور اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دلوائیں، اسے اپنی ڈیوٹی سمجھیں، خدمت سمجھیں۔ ابکری رسالے کے صفحہ نمبر 65 کو روزانہ پڑھیں، ہر دن کی گھریلو الجھنوں کا آخری حل آپ کو اچانک ملے گا۔ صفحہ نمبر 65 ابکری رسالے کے۔ تسبیح خانے میں عید و ضحیٰ صبح 5:30 بجے ادا کی جائے گی، اور جب بھی آپ حویلی، تسبیح خانہ، روحانی منزل تشریف لائیں تو بستر کے ہمراہ نہ آئیں، بستر کے ہمراہ آئیں، بستر کے بغیر نہ آئیں۔ ایک پیکج ہے روحانی ہانی مون کا، نئے شادی شدہ جوڑے تسبیح خانے میں 21 جمعراتیں درس میں آئیں، زندگی بھر کے لیے بیٹے، نعمتیں، مرادیں اور دولتیں پائیں۔ جو بھی شادی شدہ جوڑے ہیں 21 جمعراتیں روحانی ہانی مون کے نام پہ درس پہ آئیں۔ اور آخری اعلان، آئندہ جمعرات ذلحج کی نوچندی کا خاص درس ہوگا، اللہ پاک ہماری ان سچی راہوں اور قبول فرمائے۔ بیعت کا عمل ہے، بیعت کا عمل جو پہلے سے بیعت ہے وہ تجدید بیعت کر لیں گے، اور جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں میرے ساتھ کلمات پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ بیعت ہو جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی، شرک بدعت صغیرہ کی بلا گناہ، تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا، تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول کر. اللہ مبارک کرے. تین تسبیحات کا اہتمام، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، تلاوت، نماز با جماعت، اور اپنی حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں. اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، اور درس ایک بہترین رابطہ ہے. میں بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. اب ذکر خاص ہے، دعا کا وقت ہے، عین توجہ کا وقت ہے. ڈوب کے اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے پڑھیں گے، اور پوری دل کی گہرائیوں سے، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے. جتنا درد ہوگا، جتنا ڈوب کے پڑھیں گے، اتنی جھولیاں بھر کے جائیں گے، اتنا مرادیں پا کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ ہو 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 يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم من كل كريم ويا أعظم من كل عظيم أغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاكي على عهدك أنت الله على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين مولا اتنی گرمی اتنی حبس بھوکے پیاسے پردیسی دکھوں کے مارے غموں کے مارے اے میرا مولا ہاتھ اٹھائے بے بسی کی حالت میں تیرے سامنے بیٹھے کسی کا گھر لوٹا کسی کا دل لوٹا کسی کی نیکیاں لوٹی کسی کی راتیں لوٹ گئی کسی کی اولادیں لوٹ گئی کسی کی زندگی لوٹ گئی کسی کا مال لوٹ گیا کسی کے اعمال لوٹ گئے کوئی خالی ہو گیا کوئی فقیر بن گیا اب تیری بارگاہ میں بیٹھے ہاتھ اٹھائے بھکاری بنے پردیسی مسافر ہیں غم کے مارے ہیں غموں کے مارے یہ آنسو جھوٹے سہی پر ہیں اے میرا اللہ اے سخی آقا ہماری حاضری کو قبول فرما ہماری حاضری کو قبول فرما ہماری حاضری کو قبول فرما خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما خیر برکتیں عطا فرما زندگیاں تمنگیاں عطا فرما راحتیں عافیتیں عطا فرما اولاد کے غم سے بچا بے اولادوں کو اولاد دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے اولادوں کو اولاد دے دے بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے مشکلیں حل فرما آسانیاں پیدا فرما راحتیں عطا فرما راحتیں عطا فرما ہمارے پل پل میں اپنی رحمت کو متوجہ فرما اپنے کرم کو متوجہ فرما اپنی دنیا ہماری دنیا آخرت بہتر فرما دنیا آخرت کے گھاٹوں سے بچا ذلت علت قلت سے بچا راحت کا سامان پیدا فرما عافیت عطا فرما عافیت عطا فرما عافیت عطا فرما ہماری دنیا بھی بہتر کر دے ہماری آخرت بھی بہتر کر دے ہماری دنیا بھی بہترین کر دے اور ہماری آخرت بھی بہترین کر دے ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما ہماری ساری مشکلیں حل فرما اور ناکامیاں دور فرما اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ہمارے سارے مسئلے حل کر دے اور ہماری ساری مشکلیں دور کر دے اور ہماری ساری ناکامیوں کو ختم فرما دے اللہ عزت کی راہیں دے دے خیر کی راہیں دے دے برکت کی راہیں دے دے وسعت اور عافیت دے دے وسعت اور عافیت دے دے وسعت اور عافیت دے دے ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے ہماری مشکلوں کو حل کر دے ناکامیوں کو دور کر دے کامیابیاں قریب سے دکھا دے کامیابیاں قریب سے دکھا دے اللہ قیدیوں کو رہائی دے دے قرضداروں کے قرضے دور کر دے مسائل حل کر دے مشکلیں دور کر دے ناکامیاں ختم کر دے اللہ ہمیں عبرت کا نظام نہ بنا عبرت کا نشان نہ بنا عبرت کی منزل نہ بنا شمعت العدا ایسا نہ بنا کہ دشمن ہنسے اور دشمن تالیاں بجائیں ایسی ہماری صورت نہ بنا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے غیب کے خزانے عطا فرما غیب کے خزانے عطا فرما غیب کے خزانے عطا فرما لطف اور کرم متوجہ فرما رحم اور رحمت متوجہ فرما عزت کے چھن کے دے دے, عزت کی چادریں پہنا دے, عزت کے تاج پہنا دے, بس کرم کر دے, بس رحم کر دے. پوری دنیا میں تیری بندیاں بندے چہل بیٹھے آمین کہہ رہے, ان کی آمین قبول, ان کی مرادیں پوری فرما, ان کی مشکلیں حل فرما, ان کی ناکامیاں دور فرما, ان کو عزت برکت راحت رحمت خوشیاں خوشحالیاں رزق وسیع عطا فرما. آمین کہنے والے ہر فرد کی آمین کو قبول فرما, اور منہ پہ پھیرنے سے پہلے پہلے قبول فرما. کسی کی آمین کو رد نہ فرما, کسی کی آمین کو رد نہ فرما, کسی کی آمین کو رد نہ فرما. سب کی آمین قبول فرما, سب کی آمین قبول فرما, سب کی ضرورتیں پوری فرما, سب کی مشکلیں حل فرما, سب کی ناکامیاں دور فرما, اور سب کو عافیت عطا فرما, عافیت عطا فرما, عافیت عطا فرما. بس بن مانگے عطا فرما, بس بن مانگے عطا فرما, بس بن مانگے عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما. جو مصیبتوں کے غموں کے دکھوں کے پریشانیوں کے مقدمات کے مارے آئے بیٹھے ہیں ان کو عافیت عزت اور راحت عطا فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم, وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.